ओम शांति। 1789 फ्रांस क्रांति हुई थी। उस क्रांति में इतिहास की एक अद्भुत घटना हुई। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जानते होंगे, फ्रांस में पेरिस में एक कारागार अब भी है, बेस्टाइल जिसको कहते हैं। उस बेस्टाइल में उस समय बहुत सारे कैदी बंद थे, और ये वो कैदी थे कि जिनको ताउम्र सजा दी गई थी। सभी के हाथों में बेड़िया थी, पैरों में बेड़िया थी, और उन्हें अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था, और वो जो चाबियां थी, सब कुछ, सारी चाबियां कुएं में डाल दी गई थी, फेंक दी गई थी। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40, कोई 50 साल से वहां बंद थे। जब क्रांति हुई और वो क्रांतिकारी आए, विद्रोह हुआ, विप्लव हुआ, उस रिवॉल्ट में, उस बगावत में क्रांतिकारियों ने संकल्प किया कि सभी को मुक्त कर देंगे। भागे और वो कारागार, वो कारागृह था, उसको तोड़ा और एक एक कैदी को मुक्त किया जो कितने ही समय से उस अंधकार में कोठरी में बंद थे। एक एक को पकड़ पकड़ के बाहर लाया, उनकी हथकड़ियों को तोड़ा, पैरों की बेड़ियों को तोड़ा, उनको बाहर लाया गया और उनसे कहा गया, आज से तुम मुक्त हो। एक जबरदस्त संग्राम, परंतु एक अद्भुत घटना घटी। जो कैदी वहां बंद थे वो कहने लगे, नहीं, हमें वहीं रहना है जहां हम थे। ये प्रकाश हम नहीं देख सकते क्योंकि कई दिनों से हम अंधकार देख रहे थे। और वो कहने लगे, हमें नींद नहीं आ रही है जब तक हमारे हाथों में बेड़ियां ना हो, जब तक वो जंजीरें शरीर से ना लगे। उन्हें समझाया गया, अब तुम मुक्त हो, परंतु वो नहीं माने। दोपहर हुई और शाम होते होते सारे ही कैदी वापस उसी काल कोठरी में, अपनी अपनी काल कोठरी में चले गए। वो सोचने लगे, अब हमारी पालना कौन करेगा? वहां हमको भोजन तो मिलता था कम से कम, अब इस उम्र में हम भोजन कहां से बनाए? हमारे मित्र संबंधी सारे खो गए हैं। और वो सारे ही कैदी फिर गए, फिर वो बेड़िया ली और अपने शरीर पे उन्होंने लगा ली। जब लंबा समय तक व्यक्ति बंधन में रहता है तो बंधन प्रिय लगने लगता है। जब लंबा समय कारागार में रहता है, अंधकार में, कोठरी में रहता है, तब वो घटाटोप, डार्कनेस प्रिय लगने लगती है। फिर वो प्रयत्न भी नहीं करता कि मैं यहां से छूटू, यहां से मुक्त हूं, और उसी बंधन में, उसी दुख में, उसी रात में फंसा रहता है, बंधा रहता है। ये घटना केवल वहां की नहीं, मनुष्य के मन की घटना है। मन भी ऐसे ही कितने सारे बंधनों में, अंधकार में, भेड़ियों में बंधा है, और हर एक अपने बंधन को जानता भी है, परंतु जानते हुए भी वो बंधन से छूटना नहीं चाहता, क्योंकि बंधन से एक अज्ञात प्रेम है। मनोविज्ञान में एक बीमारी का वर्णन है, द बेबी एलिफेंट सिंड्रोम, बेबी एलिफेंट सिंड्रोम। एक हाथी है, बहुत छोटा है, और उस हाथी को कहीं भाग ना जाए, एक पतली सी नाजुक सी बेड़ी से बांधा हुआ है। वो हाथी कोशिश करता है वहां से भागने की, वहां से छूटने की, जैसे बाकी हाथी है, उसे भी स्वतंत्र होना है। बहुत कोशिश करता है, परंतु वो कमजोर है क्योंकि अभी छोटा है, और वो जो सलाख, वो जो बेड़िया है, मजबूत है, शक्तिशाली है। बहुत प्रयत्न करता है, बहुत प्रयत्न करता है, पर नहीं हो पाता। हाथी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, पर प्रयत्न करना छोड़ देता है। हाथी प्रौढ़ हो जाता है, और उसको एक छोटी सी बेड़ी से बांधा गया है, परंतु वो जरा भी कोशिश नहीं करता उड़ने की, भागने की, दौड़ने की, स्वतंत्र होने की, मुक्त आकाश में जाने की, मन के, क्योंकि मन ने ये स्वीकार कर लिया, ऐसी कंडीशनिंग हो गई है कि इससे छूटा नहीं जा सकता, और वैसा ही रहता है। ये दो घटनाएं हैं। पहली घटना में व्यक्ति जकड़ गया है बंधन में, और जब उसको छोड़ा जाता है तो फिर से भाग कर उसी बंधन में जाकर बंधता है। दुख में है, कोई आता है दुख से छुड़ाता है, परंतु दुख से प्यार इतना अधिक है, सॉरो एब्सॉर्प्शन, कि वापस उसी दुख में, उसी दर्द में, उसी पीड़ा में, उसी वेदना में स्वयं को डुबो लेता है। और दूसरी ओर मन ये स्वीकार कर लेता है कि ये बंधन अनंत काल तक चलेगा। मन ये स्वीकार कर लेता है कि इस बंधन से मैं आज के बाद कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। ये बंधन, ये बेड़िया, ये सलाखे, ये केज, ये पिंजड़ा, ये चेन सदा काल के है। बहुत कमजोर, संकल्प की आवश्यकता है और छूट जाएंगे, परंतु व्यक्ति बंधा रहता है, पड़ता है छूटना है, पड़ता है स्वतंत्र होना है, परंतु कुछ सूक्ष्म कारण है और वो कारण उसे बांध कर रखते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में भी बाबा चाहते हैं हम मुक्त पंछी बन जाए। लास्ट संडे की मुरली, तीन चीजों का उसने वर्णन था। तीन मंजिल तुम पार करते हो परमात्मा प्रेम से। पहला शरीर, दूसरा संबंध, और तीसरा था वस्तु। वस्तु में बाबा ने कहा था, विषय भोग अर्थात विष भरे भोग जो व्यक्ति को जाल में बांध देते हैं, मेरे मेरे के, एडिक्ट हो जाता है, बंधन में फंस जाता है, कखपति बन जाता है और पिंजड़े का पक्षी बन जाता है। जो बंधन हमारे हैं, यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो मैंने ही और मेरे ही मन ने निर्माण किए हुए हैं। मेंटल स्लेवरी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्लेवरीज इन द वर्ल्ड। पेन, बिटरनेस, नेल्सन मंडेला ने अपने अनुभव में लिखा है कि रियल फ्रीडम स्टार्ट्स, या फिर रियल फ्रीडम डज नॉट स्टार्ट व्हेन वी गो आउट ऑफ द प्रिजन, बट व्हेन वी get rid of even the hatred and the bitterness that we experienced in the prison. कई सारे अफ्रीका के कैदियों ने अपने अनुभव लिखे जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा, जो हमने सहन किया वो बहुत छोटा है, और मानवता जिस बंधन में और जिस पीड़ा में और जिस कारागार में है वो अधिक है, क्योंकि दिस इज मेंटल स्लेवरी। मानसिक गुलामी, क्योंकि मन कंडीशन हो गया है और मन छूटना नहीं चाहता। उसे पता है ये बंधन ही मेरे जीवन की एकमात्र बाधा है। वो बंधन कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संबंध, कोई वस्तु, कोई साधन, कोई वैभव, कोई संपत्ति, कोई जॉब, कोई ऑक्यूपेशन, कोई प्रोफेशन, जिसने हमें पकड़ के रखा है। और यदि हम देखें आध्यात्मिक पहलू दृष्टिकोण से, तो जिसको हमने पकड़ा है उससे प्राप्ति आध्यात्मिक उन्नति के रूप में कुछ भी नहीं है, पर मन का बंधन है जरूर। मनुष्यता द बेबी एलिफेंट सिंड्रोम से ग्रसित है, मेंटल स्लेवरी, गुलामी है अंदर। क्या मैं ब्राह्मण आत्मा ऐसी गुलामी से मुक्त हूं? वो कौन से बंधन है, वो कौन सी चेन से जिसने मुझे जकड़ के रखा है? तो आज की सभा में, सत्र में, क्लास में ब्राह्मण आत्मा जो कि उड़ना चाहती है मुक्त गगन में, ऐसी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा, साधारण पुरुषार्थी नहीं, ऐसी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा जिसकी अभिप्सा है, आकांक्षा है तीव्रता की, उड़ान की, परवास की, फ्लाइट की, उसके क्या बंधन है, इसकी चर्चा हम करेंगे। ऐसे 10 बंधन जिसको सुनना नहीं है, केवल सुनना नहीं, सुनते सुनते ही संकल्प करते जाना है कि मैं इससे मुक्त हो रहा हूं। सुनते सुनते ही साथ साथ पुरुषार्थ लिखना, बाद में याद करके लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। डायरिया बहुत भर दी है हमने, डायरी बंद कर दो तो बहुत अच्छा, डायरेक्ट बुद्धि रूपी डायरी पर लिखना है। एक गृहस्थी साधु के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ इस संसार के बंधनों से, बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ा है इन बंधनों में, मैं इन बंधनों में अब कब तक रहूं, जो भी करता हूं बंधन बन जाता है, पुण्य भी करता हूं वो भी बंधन बन जाता है, मैं क्या करूं? वो साधु कहता है, चलो मेरे साथ। और वो साधु जंगल में ले जाता है, एक झाड़ को पकड़ता है जोर से और चिल्लाने लगता है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो वो व्यक्ति कहता है, कैसे मूर्ख हो, खुद ही पकड़ के रखे हो और कहते हो मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। साधु कहता है, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, संसार को किसने पकड़ रखा है? तुमने ही पकड़ के रखा है। क्यों अब तक संसारी पद, पोजीशन, संसार का वैभव, संसार के बंधन तुम्हें आकर्षित करते हैं? क्यों वैराग नहीं आता? अनित्यम असुखम लोकम, ऑल इज वैनिटी, वैनिटी ऑफ वैनिटी उपनिषद कहते हैं, जो दिखाई दे रहा है सब व्यर्थ है। एक ईश्वरीय सत्ता और उसका प्रेम ही सत्य है, उसके अतिरिक्त जो कुछ है भ्रम मात्र है, और उसमें व्यक्ति उलझा है। तो क्या हम करें कि हमारे सारी बेड़ियां छूट जाए, जिस पिंजड़े में हम बंद है वो टूट जाए और आकाश में हम उड़ने लगे? सबसे पहला बंधन जिसकी चर्चा रोज मुरलियों में आती है, द मोस्ट सेलिब्रेटेड बंधन, देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार, ये फर्स्ट है। इस विषय में पढ़कर कुछ नहीं होगा, अनुभव शरीर से डिटैच होने का अनुभव। हमें याद है भक्ति मार्ग में एक सत्संग में हम बैठे थे, एक महाराज बैठे थे जिनका एक पैर दिखाई दे रहा था, उंगलियां, और हमको लगा उन्होंने काला सॉक्स पहना है क्योंकि ब्लैक दिख रहा था। जब सत्संग पूरा हुआ और उन्होंने पैर हिलाया तो वो सारी मक्खियां थी, दूर से दिख रहा था वो सॉक्स है, पर प्रवचन करते समय वो उससे अलग थे, डिटैच थे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कितना हुआ है। ऐसे एक्सपीरियंसेस द्वापर से अब तक कई आत्माओं को हुए जिनके पास अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं था। माइकल जैक्सन लिखा है, व्हेन आई डांस अ स्टेज कम्स इन माई लाइफ, व्हेन आई फील दैट द डांसर एंड द डांस बिकम वन। जय कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वर बिकम वन। ये कौन सी अवस्था है कॉन्शियसनेस की, चित्त की? ये वो अवस्थाएं हैं जहां पर देह का भान, देह का अभिमान, देह का अहंकार छूट जाता है और व्यक्ति अशरीरी अवस्था का अनुभव करता है। और उस अवस्था में उसे पता चलता है कि वो जो था वो बंधन था, तब ही पता चलता है, तब तक नहीं पता चलता है, तब तक वो सोचता है यही नॉर्मल है। बट वंस द स्पिरिट गोज आउट और उस अनुभव में रहती है थोड़ा समय, और ये अनुभव बाबा के सम्मुख हो सकता है, कमरे में हो सकता है, अमृत वेला हो सकता है, और कभी कभी अज्ञात समय में हो सकता है, प्रकृति के सानिध्य में हो सकता है, एकांत में कोई बैठा है और अचानक अशरीरी। परंतु इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है, मौन और एकांत। बिना इन दो चीजों के अध्यात्म में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। जैसे हमने बताया, हमारे जीवन में ही जो पहला मौन था उसमें हमने कोई साधना नहीं की, कुछ नहीं किया, परंतु जो होने वाली घटनाएं होती थी जैसे दिख जाती थी और पता चल जाता था ये होने वाला है, माइंड और मेंटल ब्लॉकेजेस जो है यहां के क्लियर होने लगते हैं, एक अद्भुत सी ऊर्जा बहने लगती है अंदर, इंटेलेक्ट क्लियर, क्लैरिटी आती है एक, और ये सब उस अवस्था में होता है। कई बार हमने देखा है मधुबन में जब हम बहुत जल्दी चले जाते हैं, कभी कभी 2-2.5 बजे, तो 3:30 बजे के पहले तक जो अनुभव होते हैं वो 3:30 बजे के बाद नहीं होते, जब सब उठ जाते हैं और सब आने लगते हैं, खत्म हो जाता है जो कुछ हुआ था वो 3:30 के पहले तक, और जो होता है वो ऐसा अशरीरीपन होता है। ये केवल हमारा नहीं, कईयों का अनुभव है कि जिसमें शरीर जैसे है ही नहीं, समाप्त। एक ऐसा ही अनुभव है, एक बार हम कुटिया में बैठे थे और आईसीयू से मैसेज आया कि कोई सीरियस पेशेंट आया है, तो हमने कहा, जो रेसिडेंट डॉक्टर था, कि वो एक्सपीरियंस था कि वो मैनेज कर सकता था, पर उसका फिर फोन आया, नहीं सर आप आइए। तो हम उस समय इतनी पावरफुल स्टेज में थे अशरीरीपन के कि इस संसार और ये शरीर और ये पेशेंट ये सब बहुत छोटा था, फिर भी हम वहां से उठे, आईसीयू में गए, वो पेशेंट गैस्प कर रहा था जैसे लास्ट स्टेज, फटाफट उसको वेंटिलेटर पर डाला, मुश्किल था वो इंटुबेशन भी, उसको प्रोसीजर्स की और जो भी करना था वो किया, बाहर निकले, रिलेटिव से कहा कि अभी ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे डाल दिया है, और हम वहां से निकल गए और निकल के वापस कुटिया में आके बैठ गए। हमें ऐसा लगा जैसे हम गए ही नहीं, और या फिर वो जो भी कर रहे थे वो अशरीरी अवस्था में ही कर रहे थे। और जो हमेशा हमको मुश्किल होती है कि ये काम करते समय याद कैसे करे, या काम करते समय बहुत बिजी होते समय और जब इमरजेंसी होती है तब कैसे बॉडीलेस हुआ जाए, ये हमेशा से प्रश्न रहता है और होते नहीं है इतना जल्दी अनुभव। पर हमने देखा उस दिन हम गए तो भी अशरीरी थे और सब कुछ कर रहे थे तो भी अशरीरी थे, और वापस लौट कर आए तब भी अशरीरी थे, और जब योग पूरा हुआ और 9 बजे जब हम राउंड के लिए गए तब तक हम भूल भी गए थे वो, और वो अचानक रिलेटिव्स आए और कहने लगे बहुत धन्यवाद अभी वो होश में है। तो हमको थोड़े देर के लिए याद करना पड़ा हम आए थे क्या यहाँ 3:30 बजे, हाँ शायद आए थे। पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि ये कर्म अकर्म था, ये कर्म निष्काम कर्म था, ये कर्म था परंतु हम डिटैच थे, ये कर्म था पर अशरीरी अवस्था थी, ये कर्म था परंतु मन हलचल में नहीं था, इतनी इमरजेंसी थी वो एक रीति से, जिसमें अदरवाइज थोड़ा सा आवाज होता है ये लाओ वो लाओ ये करो वो करो सक्शन करो इधर करो वो करो, पर हमने देखा कि वो गए और सब कुछ किया और आ भी गए और हम डिटैच। क्या कर्म करते समय भी अशरीरी हो सकते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। कितनी साधना की आवश्यकता है, कितनी तपस्या की आवश्यकता है। जो तपस्या अब हो रही है बहुत छोटी है, बहुत कम है, क्योंकि अध्यात्म शरीर के बाहर से चालू होता है। तो सबसे पहला बंधन है देहभान, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, इस भान से भी परे। और यह सबसे कड़ा बंधन है। हमें मधुबन में, मधुबन के आंगन में किसी ने एक गिफ्ट दी, हमें याद है ये गिफ्ट मिली। अब हम याद करने की कोशिश करते किसने दी थी, तो वो याद नहीं आता है किसने दी थी। चेहरा धुंधला सा हो गया है, वो याद नहीं कौन था, वो याद नहीं उसका नाम क्या था, वो याद नहीं वो किस सेंटर का था, किस जगह से था, यहां तक कि ये गिफ्ट भी क्या थी वो भूल गए। पर एक चीज हम नहीं भूलते, वो स्त्री थी या पुरुष, वो याद रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो बहन थी जिसने दिया था, वो भाई था, कहां से था वो कुछ नहीं पता, चेहरा भी याद नहीं आ रहा है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का जो भाव है चेतना में गहरे बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, डीपली इन्विटरेटेड। इसके लिए बाबा ने कैसा अनुभव कराया था दादियों का, स्त्री और पुरुष से भी परे, चतुर्भुज का अभ्यास करो, लेट जाओ और मर गए ये अभ्यास करो, अपने ही शरीर को जलता हुआ देखो ये अभ्यास करो, क्योंकि कोई कितना भी करे तो भी ये स्त्री है, ये माता है, ये कन्या है, ये पुरुष है, ये भाई है, ये कुमार है, ये दिखते रहता है। परंतु आंतरिक साधना ये हो कि सब आत्मा है, देह भान देह अभिमान, मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, कोई जो प्रोफेशन है उसमें कुछ हूं, हेड हूं, इंचार्ज हूं, ये सारा रहता है अंदर दबा हुआ बैठा हुआ। योग अर्थात इन सबसे मुक्त, और ये भी एक कड़ी साधना है। देह भान देह अभिमान देह अहंकार, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझ में ये विशेषता है। हम जब इंटर्न थे हमारे पास एक डॉक्टर थे, वो पेशेंट के बेड के ऊपर पैर रखकर ही बात करते थे, और वो पहले पेशेंट को ये सुनाते थे मेरे पास डिग्रियां क्या क्या है, और फिर बात करते थे ये हूं मैं, अब बताओ क्या तकलीफ है, मुझे जानते हो मैं कौन हूं, पहले यहां से चालू होता था। इतना भयंकर अभिमान, कैटेगरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, देह अहंकार एरोगेंस, देह भान स्त्री या पुरुष, देह अभिमान अपनी विशेषताओं का अहंकार, और देह अहंकार अर्थात ग्रॉस चीजों का अहंकार, स्थूल चीजों का भी अहंकार, धन का, पद का, पोजीशन का, वो अहंकार है। देहभान अर्थात स्त्री या पुरुष, देह अभिमान अर्थात विशेषताएं जो है वो, दादी ने कभी ये तीन का अंतर बताया था। तो पहला बंधन, पहली बेड़ी ये है देह का अभिमान। दूसरा है, ऐसे दस गिनाएंगे हम, देह के संबंध, देह के रिश्ते। लास्ट संडे की मुरली, क्या दिया इन्होंने तुमको, दुख सुख शांति छीनने वाले, धोखा देने वाले, मोह में फंसाने वाले। और बाप ने क्या दिया, सर्व सुखों का संबंध, फिर भी फंसा रहता है व्यक्ति, फिर भी उनसे वैराग नहीं आता है। एक पुरुष से और एक स्त्री से वैराग आता है, परंतु सारी स्त्रियों से और सारे पुरुषों से वैराग नहीं आता है। एक को छोड़ता है, दूसरे को पकड़ता है, दूसरे को पकड़ता है, फिर तीसरे को पकड़ता है, एक के बाद एक के बाद। मन की यह चंचल अवस्था है। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है एक जगह, दो प्रकार के दुखी व्यक्ति है संसार में, एक वो जिसको कुछ चाहिए था और नहीं मिला, दूसरा वो जिसको कुछ चाहिए था और मिल गया, और मिलने के बाद वो वस्तु व्यर्थ हो गई, अब दूसरा कुछ चाहिए। और उसने लिखा कि जो दूसरे प्रकार का दुखी वो ज्यादा दुखी है, जिसको कुछ चाहिए था और मिल गया, क्योंकि मिलते ही वो व्यर्थ होती है और दूसरी चीजों में बुद्धि जाती है। तो संबंध जो है शरीर के, वो एक जबरदस्त बंधन है, बेड़ी है। स्वयं को हमें इन देह के संबंधों से वैराग दिलाना है। बाइबल में लिखा है, ही हु लवेथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने लौकिक भाई बहन मां बाप को ज्यादा प्यार करता है मुझसे, मेरे लायक नहीं है। आई नीड अनडिवाइडेड अटेंशन एंड लव। लव मी विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल। यदि देहधारियों की याद और देहधारियों का प्यार और मोह उसमें मिक्स्ड है, तो वो अव्याभिचारी याद नहीं, व्याभिचारी याद है, कंटेमिनेटेड एडल्ट्रेटेड लव है। और ये मार्ग एकांगी पगडंडी है, अकेले को जाना है इसमें, कोई भी साथी नहीं है, ये सारे जो है सब छूट जाएंगे। इसके लिए भाई बहन मित्र संबंधी, पति पत्नी बच्चे, ये सब बाहर है केवल, मैं आत्मा के लिए हूं और ये मेरे अकेले की यात्रा है। इसके लिए बुद्धि जो उसमें फंसी है उससे वैराग दिलाना है, निकालना है बाहर। और जितना जल्दी, कल सुबह की अव्यक्तवाणी जो चलेगी संडे की, सोचा और किया, यह है ताजा फल, करेंगे देखेंगे वो भविष्य का फल है। अभी के अभी तुरंत दान महापुण्य, राइट नाउ। एक पत्नी अपने पति से हमेशा कहती है कि मेरा जो भाई है उसको बहुत वैराग है और वो सोच रहा है कि संसार को छोड़ के संन्यास ले लूं। एक डेढ़ साल से रोज कहता है कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वैराग है, संसार अच्छा नहीं लगता। वो पत्नी अपने पति से कहती है, पति कहता है संन्यास ऐसा थोड़ी लिया जाता है। वो कहती है कैसे, वो कहते हैं ऐसे, और निकल के चला जाता है और फिर कभी लौट के नहीं आता है। प्लानिंग नहीं की जाती, ये छोड़ूंगा, वो छोड़ूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, झटकू धक से। इसमें मोह है, अभी ये एक फूल को छोड़ता हूं, फिर दूसरे फूल को, फिर तीसरे फूल को, दूसरा तीसरा नहीं, पूरा ही छोड़ दिया, और वो भी धक से, ऐसा वैराग। अभी इससे मोह हटाता हूं, फिर उससे हटाता हूं, फिर इससे हटाता हूं, ऐसे नहीं होता है, झटकू। तो संबंध, मित्र, रिश्ते तोड़ निभाना है, सबसे प्यार करना है, हाथ फिर फिरा देना पीछे से थोड़ा बहुत प्यार से। पर हमारी अवस्था हॉस्पिटल की उस नर्स की तरह चाहिए जो पीडियाट्रिक वार्ड में काम करती है, 50 बच्चों को देखती है हॉस्पिटल में, सबकी केयर करती है, सबको इंजेक्शन देती है अपने ड्यूटी में, पर ध्यान उसका रहता है अपने बच्चे की तरफ जो घर में है। इसका मतलब ये नहीं है वो ड्यूटी नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि निग्लेक्ट कर रही है, सबको ध्यान दे रही है, पर ध्यान यहां हमारा तन होगा और वहां मन होगा। बुद्धि ऊपर लटकी रहे, फांसी में लटके रहो बाबा कहते। व्यक्तियों से वैराग क्यों नहीं आता मनुष्य को, बहुत बड़ा प्रश्न है। ईश्वरे अनुराग विषय विराग, अपने मन को समझाना है क्या पाया इनसे, तर्क करना है कि ये मिला इनसे मोह रखकर, इस संबंध को निभाकर। दिस इज सेकंड। थर्ड, देह के संस्कार, आदतें, डीप रूटेड संस्कार। इस शरीर को जैसी आदत डालेंगे वैसे वो काम करता है, इस टेस्ट को जो आदत डालेंगे वो खाता है। इन आंखों को, कानों को जो भी आदत डालेंगे वही उसको अच्छा लगता है, फिर वो कुछ भी हो, हमारे ऊपर है। संस्कार पर काम करना है। What are my deep rooted संस्कार्स, What are my deep rooted habits, इस पर चर्चा करनी है, चिंतन करना है, आपस में अपने आप से बात करनी है कि मेरे सबसे गहरे संस्कार कौन से हैं, जो कि अचानक प्रकट होते हैं और मुझे ही पता नहीं चलता ये कैसे आ गए। एकांत में प्रकट होते हैं, स्वप्न में निकलते हैं बाहर, और वो बने कैसे, कहां से बने, गंगोत्री कहां से है इस संस्कार की। ये जो विकार का संकल्प अचानक आता है, कल्पना के रूप में, इमेजिनेशन के रूप में, आवेश, आवेग, इंपल्स, फ्लो, वेव, कहां से जन्म लेती है। जरूर उसका कोई ना कोई एक उगम स्थान है, सोर्स है, फाउंडेशन है, उसको ढूंढना है। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। अगला है देह का स्थान। स्थान का ही बंधन है, और यह सहज है कि व्यक्ति का जहां जन्म होता है, जहां वो पलता है, बड़ा है, वो शहर, वो स्थान, उससे मोह हो जाता है। अचानक अगर कोई कह दे मुंबई को छोड़ दो, दुख होगा। स्थान के ऊपर जबरदस्त मोह, जबकि हम जानते हैं आत्मा निराकार, परमधाम उसका घर, यहां थोड़े समय के लिए आई है, पर रहते रहते स्थानों में मोह हो जाता है। हमारा मोह किसी स्थान में भी ना हो, चाहे कितना भी समय से हम वहां रहे, आज यहां है कल वहां, कल वहां कल वहां। मेडिकल में एक सिंड्रोम है, बेसेट सिंड्रोम। वो जो डॉक्टर बेसेट था टर्की का, बहुत उसको रिसर्च पसंद था, उसी ने वो सिंड्रोम खोज के निकाला, जिसमें आंख और चमड़ी और दूसरी जगह मुंह में छाले पड़ जाते हैं। उसके विषय में एक दूसरे सर्जन श्वार्ट्स ने लिखा है, दिस बेसेट डजंट स्टे, ही इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट इन हिज ओन प्लेस टर्की, जहां उसका जन्म लिया, उसके छोड़कर बाकी सब लोग उसको जानते हैं, क्योंकि ही कीप्स ऑन प्रेजेंटिंग हिज फाइंडिंग्स ऑल अराउंड, और अपने घर में कम रहता है। तो बेसेट ने कहा था, आई स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली और माई होम मोर बिकॉज आई एम सो मच अटैच टू देम, टू रिड्यूस माई अटैचमेंट आई कीप ऑन प्रेजेंटिंग माई पेपर ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो अपने पेपर ही प्रेजेंट करते रहता था हजारों इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में, ऐसा डॉक्टर श्वार्ट्स ने, जो कि सर्जन थे और जिनकी किताबें हैं, उन्होंने डॉक्टर बेसेट के विषय में लिखा था ये। तो स्थान पकड़े रखता है, और ये भी एक बंधन है। रहना, सब कुछ करना, पर ये बुद्धि में रहे कि यह स्थान भी चला जाएगा और हमें अगर कहीं और भी जाना पड़े तो भी हम मना सकते हैं, डूब जाएगा ये स्थान, हम मना सकते हैं। स्थान का, देह के स्थान का। अगला है देह की भाषा। जिस भाषा में व्यक्ति जन्म लेता है, जिस घर में, उस भाषा से भी अटैच हो जाते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा है, बाबा की प्रवेशता होने के बाद ब्रह्मा बाबा ने सिंधी का प्रयोग नहीं किया। फिर जब हम देखते हैं बहुत जगह ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं, ये मराठी, ये गुजराती, ये पंजाबी, और वो आपस में साथ साथ रहते हैं। हम मधुबन की बात ज्यादा बता रहे हैं, यहाँ की तो कम, ग्रुप्स बन जाते हैं। कोई मिलता है तो कभी किसी ने ये पूछा कि अरे, हमेशा यही कहते हैं आप भी महाराष्ट्र से, हम भी महाराष्ट्र से, आप भी मुंबई से और हम भी मुंबई से, किसी दूसरे स्थान पर मिलते हैं तो कभी किसी ने ये पूछा आप भी परम धाम से और हम भी परम धाम से? ये थोड़ा कम पूछते हैं और कहते हैं भाषा। कोई अपनी भाषा बोलने वाला दिख गया तो तुरंत चले जाते हैं उसके पास, एक लगाव सा उत्पन्न हो जाता है उस व्यक्ति से। देह की भाषा भी बंधन है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, बाबा के पास कौन सी भाषा आती पहुंचती है? पांच भाई है, एक हिंदी में बाबा से बात कर रहा है, एक मराठी में, एक तेलुगु में, एक तमिल में, एक जर्मन में। कौन सा बाबा के पास जल्दी पहुंचता है? हिंदी जल्दी पहुंचता है। हाँ और ये इधर झूठ झूठ बातें कर रहा होगा हिंदी में, और वो जर्मन बेचारा अच्छे से दिल से बात कर रहा होगा, तो वो नहीं पहुंचेगा। बाबा के पास कोई भाषा नहीं पहुंचती है, वाइब्रेशंस रीच हिम। भाषा तो यहीं तक रह जाती है और शब्द यहीं खो जाते हैं। जो पहुंचता है परम धाम में, उस निराकारी वतन में, तो निर्वाण है। वहां शब्द थोड़ी है, निःशब्द है, निस्तब्ध है। निःशब्द और निस्तब्ध में शब्द नहीं पहुंचा करते, केवल वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। स्थूल तो कुछ नहीं पहुंचता, भोग लगाया वहां थोड़ी जाता है कुछ। भाव क्या है, भावना क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। पत्र फूल पुष्प यदि कोई मुझे अर्पण करे तो हे अर्जुन, वो मुझ तक आता है, मैं उसे अनन्य भाव स्वीकार करता हूं। तुम्हारे 56 भोग नीचे ही रह जाएंगे, केवल और केवल भाव और भावना और वाइब्रेशंस के रूप में जो ऊपर जाते हैं उस तक पहुंचते हैं। तो भाषा में भी लगाव ना हो। हाँ, पर सेवा अर्थ भाषाओं को सीखना चाहिए, उससे सेवा होगी। जो जिस भाषा का है उसको उस भाषा में समझाओ तो वो ज्यादा समझेगा, परंतु भाषा का संबंध भाव से नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में बताया, चैतन्य महाप्रभु बंगाल से निकले, भारत की यात्रा करते करते साउथ में पहुंचे, भागवत कथा चालू थी और वहां पे वो तमिल या उस भाषा को जानने वाले व्यक्ति बैठे थे और यहां पर प्रवचन चालू था कृष्ण लीला पर, और एक व्यक्ति रोए जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु का शिष्य उनसे पूछता है कि ये जो समझा रहे, तुमको समझ रहा है क्या हिंदी? वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता है मैं केवल ये देख रहा हूं कि सामने रथ है, कृष्ण है और अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, बस ये देखकर ही मुझे रोना आ रहा है। तो भगवान भावना का भूखा और प्रेम का प्यासा है, उसे प्रेम की और भावना की भाषा समझती है। और हम जो एक ही भाषा में अटैच है और एक भाषा में दूसरे भाषा बोलने वाला एक दूसरे से अटैचमेंट चालू हो गया, दो इंग्लिश जानने वालों में ज्यादा मोह हो जाता है, दो हिंदी जानने वालों में मोह हो जाता है, दो मराठी जानने वालों में मोह हो जाता है। इसके लिए स्वयं को भाषा से भी, भाषा का जो बंधन है, मोह है, उससे भी मुक्त करना है, वो भी सूक्ष्म बंधन है। अगला है देह की स्मृतियां। अभी कोई विकार का अंश नहीं, पर पास्ट के जो भोग है उनकी यादें उनकी स्मृतियां फ्लैशबैक होता है। कोई कहते हैं हम तो बहुत अच्छा है, अभी युगल है, सब अच्छा चल रहा है, पर पुराने भोग की स्मृतियां है, उसको अभी तक न्यूट्रलाइज और नष्ट नहीं किया है तपस्या से। केवल इतने से नहीं होगा, हम बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहे हैं, हम अमृत वेला भी करते हैं और मुरली भी सुनते हैं, वो पुरानी यादों का क्या, न्यू यादें रिप्लेस करनी पड़ेगी और पुरानों को नष्ट करना पड़ेगा, और ये भी होगा फिर से उसी अशरीरी अवस्था में। लंबा लंबा समय तक परम धाम में टिकने का अभ्यास हमने देखा है कई बार। मधुबन में जो ग्रुप है वहां पर हम कभी कभी ऐसा अभ्यास करते हैं कि केवल परम धाम, बस दूसरे दिन अमृत वेला, दूसरा कोई अभ्यास नहीं करना है। और वास्तव में उस परम धाम में जब टिक जाते हैं और लंबा समय तक, फिर नीचे आने की कुछ अच्छा नहीं होती है संसार में, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग एक्सपीरियंस होता है बॉडीलेस स्टेज का कि उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है नीचे का। और उसी अवस्था में, उसी ज्वालामुखी योग में विकर्म विनाश होते हैं। तो देह की स्मृतियां फिर है, देह के धर्म, एक तो स्थूल धर्म है हिंदू मुस्लिम और ये सब, उसमें भी फिर कुछ कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम डबल ब्राह्मण हैं, उधर भी ब्राह्मण थे अब भी ब्राह्मण बने, वो उधर का अहंकार अभी भी चल रहा है। हम मधुबन में इतनी आत्माएं आती है, उन सबको देखते हैं। दूसरे सूक्ष्म धर्म है भूख और प्यास, निद्रा, योगी अर्थात जिसने तीनों को जीता है। पर इसका मतलब यह नहीं वो छोड़ दे, जीतना अर्थात नींद का त्याग करना नहीं, उस पर संयम, कंट्रोल, ये योगी की अवस्था है। तो देह के धर्म जो भी है, क्योंकि आत्मा में ये सब चीजें नहीं है, और जितना जितना आत्मा अभिमानी बनेंगे पता चलेगा जितना हम खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जितना व्यक्ति खा रहा है उसके आधे की आवश्यकता है उसको अपने शरीर को अच्छे से चलाने के लिए। ज्यादा बीमारी ज्यादा खाने से है या कम खाने से? ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम ज्यादा है, जितना अंदर डाला जा रहा है बहुत ज्यादा है, परंतु संयम इतना अति उच्चम ना अति नीचम, मित आहार, सुबह भी क्लास में बताया, सम्यक आहार में तीन चीजें होनी चाहिए। एक, उत्तेजना उत्पन्न ना करे, एक्साइट करने वाला ना हो भोजन, उसमें बहुत तीखा और बहुत मिर्च और बहुत मसाले डाले हुए हैं, एनर्जी ब्लॉक करेगा अंदर जाकर। दूसरा, राजसिक में आता है ये, दूसरा वह भोजन जो प्रमाद और निद्रा को लाए, नींद, अमृत वेला नींद, योग में नींद, मुरली में नींद, दिन भर नींद, कहीं भी बिठाओ नींद। तीसरा, वो आहार जो स्वास्थ्यवर्धक हो। ये तीन चीजें आहार में होनी चाहिए, राइट डाइट, सम्यक आहार। तो भोजन, फिर नींद, ये सब देह के धर्म है, प्यास, सब इन सब धर्मों से भी परे, स्थूल धर्म और सूक्ष्म धर्म। जितना आत्मा के वास्तविक धर्म में हम टिकते हैं ये सब चीजें कम कम होने लगती है। योगी का शरीर स्थूल भोजन से नहीं, सूक्ष्म शक्तियों से चलता है। वो मेडिकल साइंस की अभी तक समझ में नहीं आया है। अध्यात्म वहां से चालू होता है जहां मेडिकल समाप्त होता है, साइंस जहां एंड करता है वहां से स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। मैन हैज जस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ साइंस। रियल साइंस तो स्पिरिचुअल साइंस है, और जो साइंस मनुष्य जानता है बहुत छोटा है, बहुत कम है, उससे तो पश्चाताप करता है। आइंस्टाइन ने लिखा है कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं प्लंबर बनना पसंद करूंगा, मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना है, कि जो खोजे मैंने की मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा उससे होगा। हिरोशिमा और नागासाकी में जो कुछ हुआ उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। E=mc². उसने तो बहुत पश्चाताप किया। तो वो विज्ञान है, वो मेडिकल साइंस जहां एंड हो रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी वहां से चालू होती है अध्यात्म की। तो देह के और धर्म जो है इनसे भी धीरे धीरे ऊपर जाना है। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, विदाउट कंट्रोल ऑफ पैलेट द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य इज इम्पॉसिबल। उन्होंने अपनी जीवन कहानी में एक और चीज लिखी है, व्हेन आई वॉज ऑन द फ्रूट डाइट फॉर 5 ईयर्स आई वॉज लिटररी फ्री फ्रॉम ऑल प्रोपेंसिटीज फॉर लस्ट। डाइट का और ब्रह्मचर्य का घनिष्ठ संबंध, जितना उत्तेजक और जितना वो स्वाद वाला है उतना ही एडिक्शन क्रिएट करता है, फंसाता है, मुक्त नहीं होने देता। तो देह के धर्म का अगला है देह के भोग, सब जुड़ी हुई चीजें पर वो भी बंधन है। जैसे कहा, जो आदत हम अपने आप को डालेंगे वही चाहिए, फिर वो शरीर के विकार के भोग हो। मनुष्य को विकार की आदत द्वापर से पड़ गई। द टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन, टेस्ट आ गई। फिर उसके बाद में वो घास फूस पसंद नहीं आती शेर को, विकार भी वैसे ही है, वो भी एडिक्शन क्रिएट करने वाले हैं। ये जो एक फिलॉसफी है कि एक बार भोग लो जितना भोगना है उसके बाद में छोड़ देंगे, सुनने में बहुत अच्छा है, परंतु जितना व्यक्ति भोगता है उतना ही वो एडिक्शन और प्रगाढ़ होता है, आदत, और फिर उसके बिना रह नहीं सकता और वो खींचता है। अगर ना मिले तो मनसा में संकल्पों के और इमेजिनेशन से उसको तृप्त करता है। देह के भोग, फिर है देह की इच्छा है। ये देह बहुत सारी चीजें चाहता है, जितनी उसको दो और चाहिए। इसमें आएगा सुख सुविधा है, ये बेड, ये एसी, साइंस के सारे सुख है, बहुत अच्छे हैं, तो प्रयोग करो, उसकी मना नहीं है, पर वो जब नहीं रहेंगे तब भी दुख ना हो। बाबा ने कहा है विदेशियों को, एक समय आएगा तुमको पहाड़ों पर सोना पड़ेगा, और जो तुम अपनी पेटियां लाते हो बड़ी बड़ी उसको तकिया बनाना पड़ेगा। ये कहा है बाबा ने, समय ऐसा आएगा जो सुख सुविधाएं सारी छिन जाए उसके बाद भी हम अचल डोल खड़े रहे। तो देह की ये सारी इच्छा है, कोई अंत नहीं है इसका, अंतहीन है। महात्मा बुद्ध जब जा रहे होते हैं संसार छोड़कर, उनका सारथी उनके साथ है, वो कहता है एक बार पीछे मुड़ के तो देखो, वो देखो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी सुंदर पत्नी, तुम्हारा बच्चा, वो राजप्रासाद, वो महल, सबको तो देखो। वो पीछे देखते और कहते हैं मुझे केवल आग की लपटें दिखाई दे रही है, बस, नथिंग एल्स, आई सी बट द फ्लेम्स ऑफ फायर, दैट्स इट। तो देह की इच्छा है। कितने हुए, हो गए 9, और लास्ट क्या बचा है? देह के पदार्थ, वस्तुएं, वस्तु, संसार की वस्तुएं। एक वस्तु गुम हो जाती है तो हलचल होती है। एक चम्मच यदि गुम हो गया उसको ढूंढने में पूरा दिन लगा देंगे। चीजों की संभाल करना अच्छी बात है, पर एक वस्तु खो गई तो जैसे सारा संसार खो गया, उसके पिछाड़ी सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मधुबन में गए, डायमंड हॉल के बाहर चप्पल निकाली, आए, चप्पल गायब। बाबा गया एक तरफ, गए थे प्रभु मिलन मना ले, और दिन रात चप्पल 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 और चप्पल और चप्पल की ही चर्चा, किसी को तुमको दिखी क्या, तुमको मिली क्या। वस्तु पकड़ लेती है, जबरदस्त आकर्षण है वस्तु में, स्थूल है पर आकर्षण बहुत है उसमें। एक व्यक्ति एक होटल में जाता है रुकने के लिए, तो वो मालिक कहता है कमरा खाली नहीं है, वो कहता है प्लीज एक ही रात की बात है, कल पूरा दिन काम में रहूंगा, रात में आऊंगा, रुकूंगा, सुबह सुबह निकल जाऊंगा एक। वो कहता है बिल्कुल नहीं, वो कहता है मैंने सुना है यहाँ कमरा खाली है एक ऊपर का। वो कहता है नहीं, क्योंकि नीचे एक जो व्यक्ति रहा है वो इतना झगड़ालू है, जरा भी अगर कोई आवाज करता है ऊपर के कमरे में तो चिढ़ जाता है और झगड़ा करता है, इसके लिए हमने ऊपर का कमरा खाली रखा है। वो कहता है मैं तो सारे दिन भर बाहर रहूंगा, रात में लेट आऊंगा, पांच चार घंटे पांच घंटे सोऊंगा, सुबह सुबह निकल जाऊंगा। तो वो कहता है ठीक है, रात सारा दिन तो वो बाहर रहता है, रात को लेट आता है 11-12 बजे, और इतना थका हुआ होता है कि जूता निकालता है और नीचे धड़ाम से फेंकता है, और एक जूता निकालते ही उसको याद आता है अरे नीचे आदमी जो है झगड़ा करने आने लगेगा, तो दूसरा जूता चुपचाप बड़े हाथ से निकालता है और नीचे रखता है और सो जाता है। नीचे का जो व्यक्ति होता है जिसने जोर से आवाज सुनी, वो सोचता है दूसरा जूता का क्या हुआ, और वो सोचते रहता है उसके बारे में, बेचैनी होने लगती है उसके अंदर, क्या हुआ क्या हुआ, जूता ही जूता दिखाई देने लगता है, और फिर उससे रहा नहीं जाता है, और फिर आधे घंटे के बाद ऊपर जाता है, वो कहता है जूता तुमने गिराया था, वो कहता है सॉरी सॉरी प्लीज, वो तो सो गया होता है, प्लीज मुझे ध्यान नहीं था। वो कहते हैं उसके लिए नहीं आया हूं, दूसरे जूते का क्या हुआ, मैं उसके लिए आया हूं। हमारी बुद्धि में कौन से जूते घूम रहे हैं या चप्पल घूम रही है। देह की वस्तुएं वस्तुएं चली जाएगी, और सुबह भी एक बात कही थी उसको रिपीट करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर इस क्लास को पूरा करेंगे। जीवन में तीन चीजें हैं, टॉप मोस्ट है हमारी स्थिति 1 करोड़ जिसकी कीमत है, उसके बाद है संबंध व्यक्ति 1 लाख, और तीसरे नंबर पर है सेवा या वस्तुएं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी स्थिति, उसके बाद है मनुष्य व्यक्ति संबंध, फिर वस्तुएं। वस्तुएं खो गई, हमने किसी को कोई कीमती चीज दी, उसने तोड़ दी, नुकसान हो गया, हमने उसको बहुत डांटा कैसे तुमने तोड़ दी, संबंध बिगड़ गया। अब वस्तुएं तो आ जाएगी पर व्यक्ति नहीं आएगा, कोई कुमार है और जिसको बहुत डांट दिया वो कुमार चला जाएगा, वस्तुएं आएगी, कोई कुमारी है वो चली जाएगी, वस्तुएं आ जाएगी, कोई माता है वो चली जाएगी, वो वापस नहीं आएगी, वस्तुएं आ जाएगी, सेवाएं हो जाएगी। विदेश की बहन ने अनुभव सुनाया है हॉस्पिटल में एक बार क्लास कराते हुए, कि किसी एक बहन को बहुत बड़ी रकम दी गई जो सारे भाई बहनों के पैसे थे रखने के लिए, और उसने वो गुम कर दिए, कहीं खो गए उसके वजह से, तो उसको इतना डांटा, और बाद में वो पैसे मिल गए कहीं थे, और फिर सॉरी भी बोल दिया इन्होंने जो बड़े थे, पर जो संबंध में क्रैक आ गई, उन्होंने कहा आज 30 साल हो गए वो संबंध अभी भी टूटा हुआ ही है। पैसे आ जाएंगे, वस्तुएं आ जाएंगी, चीजें आ जाएगी, व्यक्ति नहीं आएगा। Relationships are more important than service, than things, than objects. और उसके भी importance है सबसे ज्यादा, हमारी स्थिति टॉप मोस्ट, वो हम डिस्टर्ब ना हो। तो देह के ये सारे बंधन है, देह के ये सारे पिंजड़े हैं, देह की ये सारी जंजीरें हैं, इन जंजीरों से जो गुलाम हम बन गए, इस गुलामी से हमें स्वयं को छुड़ाना है। बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे, सब अब 1 मिनट अलर्ट होके बैठ जाएंगे, एक योग की छोटी सी ड्रिल करेंगे। देह के भव्य भाल पर विराजमान, मैं एक चैतन्य मणि हूं। मुझ आत्मा से चहुओं दिव्य प्रकाश फैल रहा है। शरीर में होते शरीर से न्यारी मैं एक ज्योतिर्मयी आत्मा, संपूर्ण ध्यान संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित, मन शांत बुद्धि स्थिर, कोई आवाज नहीं, अव्यक्त वायुमंडल, मैं आत्मा इस देह से बाहर निकल रही हूं। देह का भान अभिमान अहंकार से परे, देह की वस्तुएं देह की स्मृतियां संस्कार धर्म संबंध भाषा इच्छाएं भोग संस्कार देह की दुनिया से परे आकाश में व्यक्त संसार से परे मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। सब बंधनों से मुक्त उन्मुक्त गगन में विचरण करता मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं। मैं स्वतंत्र आत्मा हूं। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया, सारे बंधन समाप्त, सारे पिंजड़े टूट गए। एक एक बेड़ियों को गिरते हुए मैं देख रहा हूं। मैं संपूर्ण बॉन्डेज फ्री आत्मा हूं। अनुभव बाबा का हाथ सिर पर है, अलौकिक शक्तियों का प्रवाह हो रहा है। असीम ऊर्जा का अनुभव, मैं निर्बंधन आत्मा हूं, मैं निर्ग्रंथ सभी ग्रंथियां समाप्त सारी गांठें खुल गई। बाबा से दृष्टि दे रहा असीम पवित्रता, बेहद का आनंद, पुनः इसी शक्तिशाली स्थिति में मैं फरिश्ता नीचे उतरता हूं। आकाश में मेरी शक्तिशाली किरणें संसार की आत्माओं को सभी बंधनों से मुक्त कर रही है। अंग अंग से निर्बंधन बनाने की किरणें चारों ओर और नीचे वापस स्थूल तन में मैं संपूर्ण निर्बंधन हूं। स्थूल सूक्ष्म सभी बंधन समाप्त हो गए। ओम शांति।